ओम शांति। हम सभी के बीच उषा दीदी पधारे हैं। आप ब्रह्मा कुमारी विद्यालय माउंट आबू राजस्थान के मुख्यालय के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं। 1980 इस वर्ष में आप पूर्ण रूपेण ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित हुए। समर्पण के पहले 12 वर्ष आपने, समर्पण के पूर्व जैसे ही आपने अपना जीवन ईश्वरीय कार्य में समर्पित किया, उसके पश्चात मुंबई हैदराबाद के महानगरों में आपने ईश्वरीय सेवाएं दी। 85 में निकली भारत एकता युवा पद यात्रा मुंबई से दिल्ली तक के पद यात्रा में आपने सक्रिय भाग लिया। अनेक गांव, नगरों, शहरों में आध्यात्मिक क्रांति लाने में आपका योगदान रहा। अनेक शैक्षणिक संस्थाओं में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मेडिकल एसोसिएशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एसोसिएशन आदि में आपके वक्तव्य होते हैं। परमोच्च परमात्मा से संपर्क साधने का साधन मेडिटेशन और मेडिटेशन की कमेंट्रीज दीदी आपने सुमधुर शब्दों से कराते हुए अनेक उनके ऑडियोज वीडियोज कैसेट्स भी बनी हैं। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेकर मानवता में आध्यात्मिकता का रहस्य पहुंचाने का एक श्रेष्ठ कार्य आप करते हैं। भारत के धर्मशास्त्र गीता और धर्म ग्रंथ रामायण का गहन अध्ययन कर आप उसके आध्यात्मिक रहस्य को स्पष्ट करते हुए ज्ञान के गुह्य रहस्यों को स्पष्ट करते हो। आपके प्रवचन सोनी चैनल से शुरू हुए, आज आपके प्रवचन जी जागरण, संस्कार, आस्था, साधना जैसे प्रसिद्ध चैनल्स पर भी टेलीकास्ट किए जाते हैं, जो हम दीदी को अनेक चैनल्स पे देखते ही हैं। आपकी स्वरचित किताब सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप हिंदी और अंग्रेजी में भी है। अनेक विशेषताओं से संपन्न उषा दीदी को हम आज सुनेंगे। परमात्मा परिचय से वह हमें अवगत कराएंगे। करतल ध्वनि से हम दीदी जी का स्वागत करते हैं। स्वागतम, स्वागतम, शुभ स्वागतम।
आर्ट एंड कल्चर प्रभाग के तरफ से आज सुबह में आप सभी ने राजयोग का प्रथम सत्र सुना और बहुत अच्छी तरह से आप स्वयं से रूबरू हुए, खुद का खुद से परिचय हुआ। अभी हम सभी ने बहुत सुंदर ये गीत सुना, एक खुदा तू बता दे तेरा नाम क्या है, तेरा काम क्या है, तू कहाँ रहता है, ये दुनिया बनाने का तेरा मकसद क्या है। ऐसे अनेक सवाल, और शायद ये सभी सवाल आज के हर मनुष्य के मन में उत्पन्न होता रहता है। खास करके ये सवाल जरूर उत्पन्न होता है कि आखिर भी भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई, उसके मन के अंदर ऐसी क्या बात थी जो उसने ये दुनिया बनाई। आज इन्हीं प्रश्नों का जवाब हम देखेंगे आज के सत्र के अंदर, क्योंकि राजयोग माना ही आत्मा के परमात्मा के साथ का एक संबंध, आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध तभी जुड़ सकता है जब आत्मा का भी यथार्थ ज्ञान हो, तो पिता परमात्मा का भी संपूर्ण ज्ञान, शुभ आत्मा का ज्ञान तो आपको प्राप्त हुआ कि आत्मा की वास्तविकता क्या है। अभी हम देखेंगे परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। जहां तक आत्मा का विषय आता है वहां तक तो फिर भी एक ही मान्यता होती है हरेक में कि आत्मा को किसी ने शक्ति कहा, रूह कहा, सोल कहा, स्पिरिट कहा या एनर्जी कहा, सभी उस चैतन्य शक्ति की ओर इशारा करते हैं जो इस शरीर को चलाने वाली है। परंतु जहां परमात्मा का विषय आता है वहां अनेक मत मतांतर हो जाते हैं। और आज ईश्वर को लेकर के दुनिया में इतनी सारी मतें हो गई है कि मनुष्य इतना कंफ्यूज हो चुका है कि आखिर भी वो परमात्मा कौन है। इसीलिए उसकी शिकायत रहती है कि भगवान को याद करना तो चाहते हैं लेकिन भगवान में मन नहीं लगता है। तो परमात्मा में हमारा मन लगे उसके लिए कम से कम हमें ये तो पता हो कि वो कौन है। कुछ समय पहले मैं अमेरिका गई थी, वहां एक बहन ने मुझे बताया कि उसका बेटा 17 साल का है और वो उसकी माँ से पूछता है कि हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों है, क्रिश्चियन धर्म में एक गॉड क्यों है। वो माँ उस बच्चे के प्रश्न का जवाब देना चाहती है और यही कहती हिंदू धर्म में ये सारे भगवान हैं। वो बच्चा कहता है इतने सारे भगवान तो नहीं हो सकते, भगवान तो एक होना चाहिए और अगर ये सारे भगवान है तो इन सबका हेड कौन है। परिवार में भी एक हेड ऑफ द फैमिली होता है, तो अगर ये सारे भगवान है तो इन सबका हेड कौन है। वो माँ उस बच्चे के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाती और इसलिए जब भी वो माँ अपने बच्चे से कहती है बेटा मंदिर चलो, वो बच्चा मना कर देता है यही कहते हुए कि मंदिर जाने के बाद आई गेट सो कंफ्यूज्ड कि मेरा मन तो लगता ही नहीं है और इसलिए मुझे ऐसा महसूस होता है कि मंदिर जाने के बाद आई एम वेस्टिंग माय टाइम, मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं, मेरा मन तो लगता नहीं है। वो माँ को बड़ा दुख होता है कि मेरा बेटा नास्तिक बनता जा रहा है, ये उसकी प्रॉब्लम थी। लेकिन आज अगर मैं आप सबसे यही बात पूछूं कि मान लो कि कल को आपका बेटा या आपका पोता आपसे यही सवाल पूछे कि हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों है, मुसलमानों में एक अल्लाह, क्रिश्चियन में गॉड क्यों है, तो क्या उसका जवाब आपके पास है? और कहीं उसने भी मंदिर जाने से मना कर दिया तो क्या आपको दुख होगा? इसलिए कम से कम आज की जेनरेशन के लिए भी हमें जानना जरूरी हो गया है कि वो परमात्मा है कौन। एक बार हमने एक कार्टून देखा कि जिसमें एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और न्यूज़पेपर में जितनी कॉलम्स आती है हर कॉलम में ईश्वर के बारे में कुछ न कुछ लिखा था। पहली कॉलम में लिखा था प्रकृति परमेश्वर है, नेचर इज गॉड। दूसरी कॉलम में लिखा था आत्मा सो परमात्मा, अहम ब्रह्मास्मि। तीसरी कॉलम में लिखा था ब्रह्म ईश्वर है। चौथी कॉलम में लिखा था कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है, सब में ईश्वर है। पांचवी कॉलम में लिखा था वो निराकार है, न नाम है न रूप है न आकार है। छठी कॉलम में लिखा था वो साकार है, जितने भी इष्ट देवी देवताएं हो गए वो सब परमात्मा के रूप है। और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था भगवान जैसा कुछ है ही नहीं। अगर सचमुच भगवान है तो प्रूव इट, सबूत दीजिए। अब जो व्यक्ति ये सारी ओपिनियंस पढ़ रहा था, सारी ओपिनियंस पढ़ने के बाद उसने क्या डिसीजन लिया होगा, सत्य किसको कहा जाए? क्या ये सभी सत्य है? इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है जिसको अभी तक हमने जाना ही नहीं? क्योंकि ये सारी मतों को देखा जाए तो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। क्या प्रकृति को परमेश्वर कहे या आत्मा को परमात्मा कहे, ब्रह्म को ईश्वर कहे या कण कण में व्यापक है कहे, निराकार को कहे, साकार को कहे या है ही नहीं कहे, तो सत्य क्या है? कितना कंफ्यूजन है। वो कहानी याद आती है कि एक बार पांच सुरदासों को कहा गया हाथी घर में जाकर देखो हाथी कैसा है। थे तो नेत्रहीन, गए हाथी घर में, जिसके हाथ में जो आया वैसे हाथी को डिस्क्राइब कर दिया। एक के हाथ में पैर आए तो कहा हाथी खंभे जैसा है, एक के हाथ में पीठ आई तो कहा दीवार जैसा है, एक के हाथ में कान आए तो कहा सूप जैसा है, एक के हाथ में पूंछ आई तो कहा रस्सी जैसा है, और एक के हाथ में सुंड आई तो कहा सांप जैसा है। आखिर हाथी कैसा था, सत्य क्या है? क्या ये सभी सत्य है, इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है जिसको वो देख नहीं पा रहे थे? इसलिए हाथी के विषय में समझना उनके लिए कठिन हो गया था। आपका विवेक क्या कहता है, सत्य किसको कहा जाए? ये सभी सत्य है, इसमें से एक सत्य है, सभी को मिला देने से सत्य बन जाएगा या सत्य कुछ और है? क्या कहेंगे, आपका विवेक क्या कहता है? सत्य क्या है? सत्य कुछ और है। तो वो सत्य क्या है? और ये कंफ्यूजन ईश्वर के बारे में इतना सारा क्यों हो गया? इस कहानी को मैं थोड़ा आगे ले जाऊं कि मान लो कि यही पांच सुरदास को कहा जाए कि एक छठा सुरदास दूर बैठा है, उसको जाकर बताना है कि हाथी कैसा है। अब वो पांचों वन बाय वन जाते हैं, हाथी को डिस्क्राइब करते हैं जो उन्होंने महसूस किया उसके हिसाब से। अब सारे लोगों की बातें सुन करके वो छठा सुरदास क्या समझेगा कि हाथी कैसा है, कितना कंफ्यूज हो जाएगा। हर एक आता है अलग बात बताता है, एक ही प्राणी और हर एक अलग अलग बातें बता रहा है, फिर भी वो विश्वास कर लेता है कि इन्होंने तो महसूस किया है ना, शायद वो सही कह रहे हो। लेकिन ये छठे सुरदास को कहा जाए कि एक सातवां सुरदास और दूर बैठा है, उसको जाकर बताना है कि हाथी कैसा है, अब उसने तो सुनी हुई बातें थी वो पांचों की, अब वो पांचों की बातें सुन करके जो उसने मन के अंदर इमेज तैयार किया है हाथी का, उसके आधार पर उसको जाकर वो सातवें सूरदास को बताना है। और वो बताता है कि मैंने जो सुना कि वो खंभे जैसा भी है, दीवार जैसा भी है, रस्सी जैसा भी है, और ये सारी बातें सुनने के बाद वो सातवां सूरदास जो पढ़ा लिखा था, इंटेलिजेंट था, उनकी बातें सुन करके वो क्या कहेगा, क्या कहेगा? यही कहेगा, बकवास, ऐसा कोई प्राणी होता है क्या? वो उस बात को स्वीकार नहीं करता है, कहता है मुझे सबूत दो। आज यही हाल हो गया हम सभी का भी, कि हो सकता है कि हमारे ऋषि मुनि जो होकर के गए, उन्होंने अपनी तपस्या के बल से ईश्वर को महसूस किया, लेकिन आज दुनिया के अंदर हर व्यक्ति नयनहीन सूरदास है। तभी तो भगवान के मंदिर में जाकर के प्रार्थना करते हैं, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, हम अंधों की लाठी बनो प्रभु। ये दो नैन तो है, लेकिन उसके बावजूद भी जब अपने आप को नयनहीन कहते हैं तो वो ज्ञान के दिव्य चक्षु प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और वो ज्ञान के दिव्य चक्षु न होने कारण आज दुनिया में हर व्यक्ति नयनहीन सूरदास वह ऋषि मुनियों ने जो अनुभव किया अपनी तपस्या की शक्ति से, उसके आधार पर उन्होंने आम लोगों को बताना चाहा कि ईश्वर कैसा है, और उन्होंने बताया, और हमारे पूर्वजों ने उन बातों को स्वीकार भी कर लिया कि हो सकता है उन्होंने तो महसूस किया, वो झूठ नहीं बोलते। वो मनुष्य ने जब अपने बच्चों को सुनाना आरंभ किया, शायद उन्होंने भी मान लिया, लेकिन वही बच्चे जब उनके बच्चों को सुनाने का प्रयत्न करते हैं तो वो बच्चे जो आज विज्ञान के युग में जीते हैं वो हर बात का सबूत मांगते हैं और कहते हैं, क्या आपके पास सबूत है कि ईश्वर किसको कहा जाए, कैसे हम मान ले? इसीलिए कम से कम आज की जेनरेशन को हम अच्छी तरह से गाइड कर सके, उसके लिए भी हमें जानना जरूरी हो गया है कि आखिर भी वो परमेश्वर का रूप क्या है। ये नहीं कि आज ब्रह्मा कुमारियों ने जो कहा उसे ही हमें स्वीकार करना है क्या? नहीं, हम आपको मत नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास इतनी मतें हैं, ऑलरेडी आप इतने कंफ्यूज स्टेज में है कि हम और ज्यादा कंफ्यूज करना नहीं चाहते हैं। परंतु आज हम आपको एक कसौटी देंगे, जिस कसौटी पर आप अपनी मत को कस कर देखो, सत्य है नहीं तो सत्य को प्राप्त करो। जैसे एक जवेरी होता है, उसके पास भी एक कसौटी रहती है जिस पर वो कस कर देखता है सोना कितना कैरेट का है, और फिर अपनी कीमत का निर्णय देता है। तो ये कसौटी है पांच बातें। पहली बात कि ईश्वर उसको कहा जाता है जो सर्वधर्म मान्य हो, जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करे उसको कहेंगे सत्य। ये नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमानों का अलग है तो क्रिश्चियनों का अलग है, नहीं, गॉड इज वन। तो जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करे उसको कहेंगे सत्य, दूसरा परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति हो, जिसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, जो सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक हो, उसको कहेंगे सत्य। जिसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, जिसका कोई माता नहीं पिता नहीं कोई गुरु नहीं कोई शिक्षक नहीं रक्षक नहीं, उसको कहेंगे परमेश्वर। तीसरा परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोपरि हो, अर्थात मनुष्य आत्मा संसार के अनेक चक्रों में आते हैं, जन्म और मृत्यु का चक्र, देह और देह के संबंधों का चक्र, कर्म और कर्म के फल का चक्र, पाप और पुण्य का चक्र, सुख और दुख का चक्र, ये सभी चक्र में हम आते हैं। परमात्मा अर्थात जो सभी चक्र से ऊपर है। चौथा परमेश्वर उसको कहेंगे जो पर होते हुए भी सर्वज्ञ है, ज्ञाता है, जिसके पास संसार के आदि मध्यंत का ज्ञान है, त्रिकालदर्शी जिसको कहते, त्रिनेत्री जिसको कहते, जो मनुष्य आत्मा को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाले हैं, और त्रिमूर्ति जिसको कहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है। और पांचवा परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत हो, सर्वशक्तिमान हो। ये पांच बातें हैं कसौटी। अब इस कसौटी पर एक एक मत को कसकर देखो, सत्य है नहीं तो सत्य को प्राप्त करें। पहली बात कि जब हम कहते हैं प्रकृति परमेश्वर है, तो क्या प्रकृति के साथ ये पांचों बातें लगती है? क्या प्रकृति को सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? क्या प्रकृति को सर्वोच्च शक्ति कहेंगे? किसी कवि ने ये बहुत सुंदर गीत की लाइन लिखी है, वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है, जिसने प्रकृति का इतना सुंदर चित्र खींचा, वो चित्रकार कौन है? तो सत्य क्या है? प्रकृति ही परमेश्वर है कहना सत्य है, या प्रकृति परमेश्वर की रचना है कहना सत्य है? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? रचना है कहना सत्य है। तो प्रकृति को परमेश्वर मानना ये अज्ञान था, इट वॉज आउट ऑफ इग्नोरेंस, जो हमने मान लिया सत्य तो नहीं है। दूसरी बात, जब हम कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, ये कहां तक सत्य है? अगर आत्मा ही परमात्मा है, तो फिर मंदिरों में जाकर के हम ये क्यों गाते हैं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे? अब सत्य क्या है? हम ही परमात्मा है या हम उस परमात्मा मात पिता के बच्चे हैं? क्या है? बच्चे। तो इसका मतलब आत्मा सो परमात्मा कहना अज्ञान था, इट वॉज आउट ऑफ इग्नोरेंस अगेन। कई बार कई लोग क्या सोचते हैं कि जीवन में अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो हम परमात्मा बन जाएंगे। परमात्मा कोई बनने की चीज नहीं है, कोई डिग्री नहीं है जो मैं अपने पुरुषार्थ से प्राप्त कर लूं। इस संसार में मनुष्य अपनी मेहनत से पुरुषार्थ से लगन से कोई भी पोस्ट पोजीशन या डिग्री को प्राप्त कर सकता है, लेकिन कोई भी इंसान खुद का बाप बन सकता है? बन सकता है? पिता जैसा बन सकता है, पिता जैसा बनकर पिता का कारोबार संभाल सकता है, पिता जैसा बनकर छोटे भाई बहनों को बड़ा कर सकता है, परंतु जब वो पिता के सामने जाते हैं तब बच्चा ही रहेंगे। ये नहीं कि अब वो पिता हो गए। इसी तरह मनुष्य ही संसार में अपनी मेहनत से, लगन से, पुरुषार्थ से जो भी टाइटल प्राप्त करना चाहे कर सकता है। दुनिया में कोई पुण्य का कर्म कम करता है और पुण्यात्मा बन जाता है, कोई महान कर्म करता है और महात्मा बन जाता है, कोई धर्म का काम करता है धर्मात्मा बन जाता है, कोई दिव्य कर्म करता है देवात्मा बन जाता है। तो देवात्मा अनेक है, धर्मात्मा अनेक है, महात्मा अनेक है, पुण्यात्मा अनेक है, पापात्मा अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। ग्रामर में परमात्माएं ये शब्द नहीं आता है, देयर इज नो प्लूरल फॉर्म ऑफ परमात्मा, गॉड इज वन। और ये सब भी आत्माएं हैं, पुण्य आत्मा पुण्य परमात्मा नहीं कहा, महान आत्मा महान परमात्मा भी नहीं कहा, धर्म आत्मा धर्म परमात्मा भी नहीं कहा, देव आत्मा देव परमात्मा भी नहीं कहा, परमात्मा एक ही है। कई बार कई लोग क्या सोचते हैं कि जैसे सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ऐसे एक बड़ी परमात्मा है, उसके टुकड़े टुकड़े होकर के अंश होकर के हम इस संसार में आए और अंत में जाकर के उसी में समा जाना है, लीन हो जाना है। ये कहां तक सत्य है? पहली बात तो जैसे सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ये संभव है क्योंकि वो मैटर है, मैटर मैटर में समा सकता है, लेकिन आत्मा या परमात्मा मैटर नहीं है, तत्व नहीं है, वो एक चैतन्य शक्ति है। और शक्ति के लिए तो हमेशा यही कहा जाता है कि शक्ति की न उत्पत्ति है न वो समाप्त हो सकती है, न उसका विनाश है। इसीलिए आत्मा के लिए यही कहा गया है अजर अमर अविनाशी शक्ति। अजर जर्जर भी नहीं होती, अमर जो मरती भी नहीं है, और अविनाशी यानी जिसके अस्तित्व का विनाश नहीं हो सकता है। तो उसके टुकड़े कैसे होंगे और वो जाकर के समाएंगे कैसे? इम्पॉसिबल। इसलिए प्रकृति के तत्व के साथ आत्मा की या परमात्मा की भेंट नहीं की जा सकती, कंपैरिजन नहीं हो सकती। तो सत्य क्या है? आपका विवेक क्या कहता है? आत्मा सो परमात्मा कहना सत्य है या आत्मा परमात्मा की संतान है कहना सत्य है? क्या कहेंगे? संतान है कहना सत्य है। दूसरा, आत्मा परमात्मा का अंश है कहना सत्य है, टुकड़ा है कहना सत्य है, या आत्मा परमात्मा का वंश है कहना सत्य है? वंश है कहना सत्य, अंश नहीं है, टुकड़े नहीं है, हम उसकी संतान जरूर है। क्लियर हो गई ये बात? आगे बढ़े, आगे बढ़े। जिसको भी प्रश्न है लिख करके रखिए, है ना। तीसरी बात, जब हम कहते ब्रह्म ईश्वर है, ये कहां तक सत्य है? अज्ञानता के कारण हम दो दो बातें करते आए हैं। एक तरफ तो नेचर इज गॉड भी कहा, दूसरी ओर प्रकृति परमेश्वर की रचना है ये भी कहा, आत्मा सो परमात्मा भी कहा, आत्मा परमात्मा की संतान है ये भी कहा। इसी तरह एक तरफ कहते हैं ब्रह्म ईश्वर है, तो दूसरी ओर कई लोग कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर। पार जो ये पांच तत्वों की दुनिया से पार एक छठा महातत्व है, दिव्य लोक है, जिसको कहा ब्रह्म महातत्व। तो पार रहने वाला, ये पांच तत्वों की दुनिया से पार निवास करने वाले परमेश्वर जो ब्रह्म महातत्व के निवासी है। अब सत्य क्या है, आपका विवेक क्या मानता है, ब्रह्म ही ईश्वर है कहना सत्य है या पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य है, क्या कहेंगे? पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य है। तो ब्रह्म ही ईश्वर है कहना अज्ञान था, इट वॉज आउट ऑफ इग्नोरेंस। चौथी बात, जब हम कहते हैं कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है, सब में ईश्वर है, ये कहां तक सत्य है? क्या सब में ईश्वर है? कूड़ा कचरा गंध गटर सब में भगवान है? आपका विवेक इस बात को स्वीकार करता है कि इतनी ऊंचे से ऊंची हस्ती और उसको हम कहें कूड़ा कचरा गंध गटर सब में भगवान है, ये कहां तक स्वीकार एक बात है? तब कई बार कई लोग कहते हैं कि नहीं, सभी प्राणियों में आत्मा भी है और परमात्मा भी बाजू में बैठा है। अब सोचने की बात है कि अगर हर प्राणी के अंदर आत्मा भी है और परमात्मा भी बाजू में बैठा हो, तो एक व्यक्ति दूसरे का खून करता है तो ये कर्म किसका, आत्मा का या परमात्मा का, क्या कहें? आत्मा का। अगर ये कर्म आत्मा का है तो उस वक्त परमात्मा अंदर बैठा क्या कर रहा था? सर्वशक्तिमान के पास इतनी भी शक्ति नहीं जो एक आत्मा को बुरे कर्म करने से रोक सके? आज घर में माता पिता हो और बच्चे बैठे हो और बच्चे किसी बात को लेकर के आपस में झगड़ा करने लग जाए तो माता पिता देखते रहेंगे कि उसका कर्म वो जाने या छुड़ाएंगे, क्या करेंगे? छुड़ाएंगे ना। तो परमात्मा अगर हम सब में बैठा हो और मनुष्य इतना गलत काम कर रहा है और उसको रोकने की शक्ति उसके पास ना हो, तो उसका बैठने का कोई मतलब है? अगर उसको कुछ करना ही नहीं है तो बैठे क्यों है? श्रीमद् भगवद गीता में भी जब भगवान ने ये वायदा दिया है चौथे अध्याय में, यदा यदा ही धर्मस्य भावार्थ, के जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है तब तब अधर्म का नाश और सत धर्म की स्थापना करने अर्थ में पुनः अवतरित होता। अगर परमात्मा आता है तो इसका मतलब वो यह नहीं है तभी तो आएगा। अगर वो यही है और उसके होते इतना पाप कर्म हो रहा है तो कौन आएगा? या तो गीता के ये महावाक्य गलत है, वो तो हो नहीं सकता है। तो भगवान ने वायदा दिया है तभी वो आएगा, मतलब वो यहाँ नहीं है। आज देखो कोई हमें कोई बात बताता है या पूछता है और हमें पता नहीं होती है तो हम क्या कहते हैं? ऊपर वाला जाने छोड़ो ना, तुम क्यों झंझट में पड़ रहे हो, कहते हैं ना। कभी गलती से भी कहा नीचे वाला जाने, ऊपर वाला जाने, फिर ये ऊपर वाला कौन है, नीचे वाला कौन है? कभी गलती से भी हमारे मुख से ये नहीं निकलता नीचे वाला जाने, ऊपर वाला जाने। उसकी महिमा में भी गाते हैं, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, जिसका धाम भी इतना ऊंचा है। नहीं तो आज देखो प्रकृति के पास भी एक गुण है कि वह अपने गुणों को ट्रांसफर कर सकते हैं। अग्नि के अंदर लोहा रख दो तो लोहा जब अग्नि के संग में आता है तो अग्नि का गुण उसमें भी आ जाता कि वो भी एकदम लाल और गर्म हो जाता है। संग का रंग, मनुष्य भी थोड़े दिन किसी के संग में रहता है तो उसको भी संग का रंग लग जाता है। मनुष्य को छोड़ो पशु पक्षी को भी संग का रंग लग जाता है। तो परमात्मा जो गुणों में अनंत है और वो अगर हमारे बाजू में बैठा है और उसका कोई गुणों का संग का रंग में न लगे, ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लेकिन तब फिर बात ये आती कि शास्त्र में ही तो सर्वव्यापकता की बात भी लिखी हुई है, तो क्या शास्त्र गलत है? शास्त्र भी गलत नहीं है, लेकिन शायद शास्त्र में जिस भाव से लिखा गया था उस भाव को हमने समझा ही नहीं है। शास्त्र में किस भाव से लिखा गया है? तो कहा जाता कि शास्त्र किसने लिखे? ऋषि मुनियों ने लिखे। और उन्होंने ये शास्त्र कैसे लिखे? तो कहा जाता कि जब वो तपस्या में बैठते थे तो अपनी तपस्या की शक्ति से आने वाले कलिकाल को देख सकते थे, और जब वो देखते थे कि कलयुग जब घोर होगा तो मनुष्य बहुत पाप कर्म करेगा। अब मनुष्य को पाप कर्म से बचाएं कैसे? तब उन्होंने शास्त्र में ये बात लिख दी कि हे मानव, तुम जब पाप करता है तो ये मत समझना कि तुझे कोई नहीं देख रहा है, ईश्वर सब जगह है, वो तुझे देख रहा है, ताकि मनुष्य को एक डर रहे और वो पाप कर्म कम करे। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब वो घुटना करना सीखता है तो घड़ी घड़ी घर के बाहर जाना चाहता है, और उस वक्त माँ को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कहीं रास्ते पर ना निकल जाए। तो माँ क्या करती है, उस बच्चे को दरवाजे तक ले जाती है, बाहर एक कुत्ता या गाय दिखाती है और कहती है, देख बाहर गया ना, कुत्ता उठा के ले जाएगा। अब कुत्ता क्यों उठा के ले जाने वाला नहीं है, लेकिन एक भय बिठाया ताकि बच्चा सुरक्षित रहे। वो बच्चा घुटना करते हुए जब दरवाजे तक जाता है और जैसे ही बाहर कुत्ता या गाय देखता है तो क्या करता है, वापस अंदर आ जाता है और खुश होता है कि मैं सुरक्षित हूँ, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, 4-5 साल का हो जाए, उसके बाद उसको कह के तो देखो कि बाहर गया तो कुत्ता उठा के ले जाएगा, क्या करेगा? हंसेगा अपनी माँ पर कि मेरी माँ भी कैसी, इतनी बात भी नहीं समझती है कि कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला थोड़ी है, और हंसते हुए निकल जाता है और बाहर जाकर कुत्ते के बच्चे को उठा के घर में ले आएगा, कहेगा लो मैं लेके आया। जिस बात को उसने सत्य मान लिया था, समझदार होने के बाद उस बात को स्वीकार नहीं करता है। ठीक इसी तरह जब ऋषि मुनियों ने ये बात शास्त्र में लिखी और कली काल आया तो लोग भी पाप करने से डरते थे। कोई अगर किसी को प्रेरित भी करता था पाप करने के लिए तो क्या कहते थे, बाल बच्चे वाला, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, मैं ये पाप नहीं करूंगा, ऊपर वाला भी देख रहा है, मना कर देता था। लेकिन आज विज्ञान के युग में मनुष्य बड़ा हो गया, समझदार हो गया, और इसीलिए कोई उसको याद भी दिलाता है, अरे क्यों इतना पाप करता है, थोड़ा तो ऊपर वाले का डर रख। तो क्या कहता है, वही डायलॉग, बाल बच्चे वाला, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, पाप नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा। पहले कहता था बाल बच्चे वाला हूँ, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, मैं ये पाप नहीं करूंगा, ऊपर वाला भी देख रहा है। और आज क्या कहता है, बाल बच्चे वाला हूँ, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, पाप नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा। आज पाप करने में इज्जत समझता है, पहले पाप न करने में इज्जत समझता था। ये अंतर हो गया। भावार्थ ये कि सर्वव्यापकता की बात एक भावनात्मक शक्ति है जिसको लेकर चलने की बात होती है। कई बार कई लोग हमसे बहस करते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, शास्त्र में ही तो लिखा है, आप कैसे ये कह सकते हैं। हम उनको एक ही बात पूछते हैं, आप मानते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है? कहते हैं हाँ हम मानते हैं। कि भगवान सर्वव्यापी है, तब उनको फिर कहते हैं इसका मतलब आपने जीवन में कभी कोई पाप कर्म नहीं किया होगा। जो मानता हो उनसे कभी कोई गलत काम हो सकता है? फिर चुप हो जाते, कहते ऐसी बात नहीं। अब ऐसी बात नहीं तो कैसी बात है? जब आपको मानना नहीं है, स्वीकार करना नहीं है, फिर उस बात को एडवोकेट करने की आवश्यकता क्या है? या तो आप मानो, कभी कोई गलत काम न करो, फिर तो आप बहस करो। इसीलिए कहा सर्वव्यापकता की बात एक भावनात्मक सत्य, उस भावना को लेकर चलो जीवन में, बहुत ऊंची बात है। उस बात को हम भी स्वीकार करते हैं। आज हम भी अगर बाहर जा रहे हैं और कोई हमसे पूछता है बहन जी आप अकेले जा रहे हैं, तो हम कहेंगे नहीं, भगवान हमारे साथ है। इस भावना को लेकर चलेंगे तो कभी कोई गलत काम नहीं होगा जीवन में। लेकिन सिद्धांतिक रूप से मान लेना कि ये माइक में भी परमात्मा, इसलिए मैं बैठ के इसकी पूजा करूं, ये टेबल में परमात्मा, इसलिए मैं बैठ के इसकी पूजा करूं, ये कुर्सी में परमात्मा, इसलिए मैं बैठ के, ये अंधश्रद्धा हो जाती है। ज्ञान हमें अंधश्रद्धा में नहीं ले जाता है। ज्ञान माना ही समझ। जब समझ जीवन में आती है तो अंतर चक्षु खुलने लगते हैं, तो वास्तविकता को समझने लगते हैं। इसीलिए भगवान के सामने प्रार्थना में यही गाते हैं, अंतर नैन खोलो, हे प्रभु आप हमारे अंतर चक्षु खोलो, ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करो जिससे हम वास्तविकता को समझ सके। पांचवी बात, जब कहते निराकार है, ना नाम है ना रूप है ना आकार है, नाम रूप आकार बिना इस संसार में कोई चीज है? हवा जो दिखाई नहीं देती है उसका भी नाम है। और एक चित्रकार को अगर चित्र निकालना और उसको चक्रवात तूफान दिखाना है तो दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता है। कि चित्र को देखकर कहेंगे बड़ी तेज हवा चल रही है, चक्रवात चल रहा है। तो जो हवा का आकार नहीं है उसको भी एक चित्रकार अपने चित्र में आकृति दे देता है। शांत प्रकृति दिखानी है कि जैसे हवा चल ही नहीं रही है, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, तो पूरा प्रतिबिंब तालाब में दिखाई देने लगता है। कि चित्र को देखकर कहेंगे कि हवा एकदम शांत है, प्रकृति एकदम स्थिर है। जो हवा का आकार नहीं है उसको भी चित्रकार ने अपने चित्र में आकृति दे दी। तो क्या स्वयं परमात्मा नाम रूप आकार बिना हो सकता है? उसका भी नाम रूप आकार है। निराकार का मतलब ये नहीं शाब्दिक अर्थ में कि जिसकी कोई आकृति नहीं है, लेकिन निराकार एक विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है कि जिसकी आकृति मनुष्य जैसी नहीं है, लेकिन उसकी अपनी आकृति तो है। वो कौन सी है? जैसे ईश्वर को निर्गुण कहते हैं, निर्गुण का भी अगर शाब्दिक अर्थ लिया जाता है तो जिसमें कोई गुण ना ही, लेकिन ईश्वर को जब निर्गुण कहते हैं, माना भाव यही है कि जिसके गुण मनुष्य जैसे नहीं है, उस अर्थ में कहा निर्गुण। ठीक इसी तरह उसकी आकृति कौन सी है? तो जिस तरह एक पक्षी का पिता पक्षी है, पशु का पिता पशु है, मनुष्य का पिता मनुष्य है, तो आत्मा का पिता परमात्मा। आत्मा का स्वरूप कैसा है? ज्योति पुंज। इसीलिए व्यक्ति जब शरीर छोड़ते हैं तो ज्योत जलाई जाती है, कि जो चैतन्य ज्योत थी वो चली गई, उसकी यादगार में वो ज्योत है। तो आत्मा का स्वरूप अगर ज्योति स्वरूप है तो उसके पिता का स्वरूप कैसा होना चाहिए? वो भी परमात्मा है। अगर आत्मा ज्योति पुंज है तो परमात्मा भी प्रकाश पुंज है। परमात्मा का मतलब ये नहीं कि कोई साइज में बड़ा है। जैसे आज की दुनिया में किसी को कहा जाए अरे आप तो बड़े आदमी बन गए, तो बड़े आदमी का मतलब कोई साइज में बड़ा हो जाना नहीं, लेकिन पोस्ट पोजीशन में बड़ा हो गया। ठीक इसी तरह परमात्मा को भी जब परमात्मा कहते हैं तो कोई साइज में बड़ा होने की बात नहीं, लेकिन सभी आत्माओं में श्रेष्ठ परमात्मा है, जिसकी पूजा भारत में ज्योतिर्लिंगम के रूप में की गई है। ज्योतिर्लिंगम जो ज्योति की आकृति है, लिंग माना आकृति। जैसे ग्रामर के अंदर शब्दों के लिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग कहा जाता है, यानी स्त्री की आकृति पुरुष की आकृति, इसी तरह ज्योतिर्लिंगम माना जो ज्योति की आकृति है। ये पत्थर की पूजा नहीं करते हैं हम, उस ज्योति स्वरूप परमात्मा के प्रति अपनी भावना को अर्पित करते हैं, जिसको नाम दिया सदाशिव। सदाशिव माना जो सदा कल्याण करने वाला है। शिव माना परम पवित्र है। शिव माना जो शांति का दाता है। तो परमात्मा का जो नाम है ये भी गुणवाचक और कर्तव्यवाचक है। आज मनुष्य के नाम गुणवाचक नहीं होता है। किसी का नाम होगा शांति भाई, लेकिन जीवन में टेंशन ही टेंशन होगा, शांति नाम की नहीं होगी, है ना? किसी का नाम होगा त्रिलोक चंद और उसके पास झोपड़ी भी नहीं होगी रहने के लिए, फुटपाथ पर रहता हो त्रिलोक चंद। मनुष्य के नाम गुणवाचक नहीं है। किसी का नाम होगा अमीर चंद लेकिन होगा फकीर चंद। आजकल तो लोगों ने देवी देवताओं के नाम भी अपने ऊपर लगा दिए, राम भाई, कृष्णा भाई, शंकर भाई, है ना? देवी देवताओं को, लेकिन वहां भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो डबल नाम चाहिए, राधे श्याम, सीताराम, है ना, गौरी शंकर। और साउथ में चले जाओ तो तीन तीन नाम मिलेंगे, शिवा रामा कृष्णा, शिवा भी रामा भी कृष्णा भी, है ना? क्वालिटीज एक की भी नहीं होंगी। तो मनुष्य के नाम गुणवाचक नहीं है, लेकिन परमात्मा का नाम भी गुणवाचक है। और इसीलिए भारत भर में 12 ज्योतिर्लिंगम है जो आज भी महान तीर्थ स्थान हो गए हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों दिशा में उसकी पूजा होती है। नॉर्थ में जाएंगे अमरनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, तो साउथ में चले जाओ रामेश्वर के रूप में उसकी पूजा होती है, कि जिसकी पूजा स्वयं श्री राम ने भी की। तो ईस्ट में चले जाओ काशी विश्वनाथ के रूप में मिलेगा, जो सारे विश्व का नाथ है। और वेस्ट में चले जाओ सोमनाथ के रूप में मिलेगा, जो सोम अमृत देने वाला नाथ है। और भारत से बाहर नेपाल जाओ तो पशुपति नाथ के रूप में भी मिलेगा। परमात्मा के जितने भी मंदिर है उन मंदिरों के नाम भी गुणवाचक कर्तव्यवाचक है, और जिसका एंडिंग नाथ या ईश्वर में होता है, अमरनाथ, बबुलनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, भोलेनाथ, या ईश्वर के रूप में रामेश्वर, गोपेश्वर, विश्वेश्वर, पापकटेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, सबसे शिव के मंदिर। भारत का कोई गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां महादेव जी का मंदिर न हो।
देवी देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई। नॉर्थ में जाएंगे श्री राम श्री कृष्ण की पूजा अधिक मिलेगी, लेकिन साउथ में चले जाओ तो श्री वेंकटेश बालाजी की पूजा मिलेगी, तो कलकत्ता चले जाओ काली पूजा मिलेगी, तो गुजरात महाराष्ट्र में जाओ गणेश पूजा मिलेगी, तो तमिलनाडु में जाओ कार्तिकेय की पूजा मिलेगी। तो देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई, लेकिन परमात्मा की पूजा सारे भारत भर में, भारत का कोई गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां महादेव जी का मंदिर न हो। इसीलिए उसको कहा गया है देवों का भी देव महादेव, कि जिसकी पूजा स्वयं देवताओं ने भी की। रामेश्वरम में श्री राम ने भी जिसकी पूजा की, अगर श्री राम भगवान थे तो उन्हें क्या आवश्यकता पड़ी जो शिव की पूजा करे। रावण से युद्ध करने तो जाना था, तो उसमें शिव की पूजा करने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्योंकि स्वयं श्री राम भी बहुत अच्छी तरह जानते थे कि जिसके सामने मैं युद्ध करने जा रहा हूं रावण, जिसको अपनी शक्ति पर इतना घमंड है, वो ऐसे ही घमंड नहीं कर रहा है, क्योंकि वो शक्ति स्वयं रावण की भी नहीं है। रावण ने भी वो शक्ति कहां से प्राप्त की थी, शिव भक्त था, इसीलिए वो जानता था कि अगर मुझे महादेव की शक्ति के सामने मुकाबला करना हो तो मुझे भी महादेव से शक्ति को प्राप्त करनी होगी। इसीलिए उसने शिव की पूजा की रामेश्वरम पहुंचते। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र के मैदान में चले जाओ जहां स्थानेश्वर मंदिर है, जहां दिखाते हैं कि महाभारत के युद्ध के पहले स्वयं श्री कृष्ण ने भी जिसकी पूजा की, पांडवों से भी कराई, पर उसके बाद हर हर महादेव करके युद्ध आरंभ हुआ। अगर श्री कृष्ण भगवान थे तो उन्हें शिव की पूजा करने की क्या आवश्यकता थी, अधर्म पर विजय प्राप्त कराना था जो बिना महादेव की शक्ति प्राप्त नहीं हो सकता था। इसी तरह जिन देवियों की हम पूजा करते, ये देवियां कौन है, तो कहा जाता है जब संसार में असुर बढ़ गए तो शिव ने अपनी शक्ति को उत्पन्न किया, इसीलिए उसको कहा जाता असुर संहारनी शिव शक्ति। तो जो देवों का भी देव, देवियों का भी देव, वो है महादेव। लेकिन यहां भारतवासी एक गलती जरूर कर देते हैं जो शिव और शंकर दोनों को एक ही समझ लेते हैं, जहां दोनों का नाम भी अलग है शिव और शंकर, जहां दोनों की आइडेंटिटी अलग है, एक है निराकार ज्योतिर्लिंगम एक है आकारी देव पुरुष, जहां दोनों का कार्य भी अलग है, शंकर के लिए कहते तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश होता है, और शिव के लिए कहते भोलेनाथ है कल्याण करने वाले, नाम अलग रूप अलग कार्य अलग, फिर एक कैसे हो सकते हैं। जब भी कोई मंत्र देता है तो ओम नमः शिवाय का मंत्र देता है, कभी उसको ओम नमः शंकराय के रूप में उच्चारा, अगर एक है तो उच्चारना चाहिए। भारत में शिव रात्रि मनाई जाती है, उसको कभी शंकर रात्रि कहा नहीं कहते, क्यों? शंकर को हमेशा ध्यान मुद्रा में दिखाया जाता, किसका ध्यान कर रहे, उनसे श्रेष्ठ कौन था। कैलाश पर्वत पर जाकर इतने सालों तक उन्होंने ध्यान किया, किसका ध्यान किया, जो भी कैलाश मानसरोवर होकर आता है वह यही बताता है कि कैलाश माना दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा ज्योतिर्लिंगम। वहां बैठकर शंकर ने भी किसका ध्यान किया, शिव का ध्यान किया, क्यों किया, क्योंकि शंकर को एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा हुआ था कि आंख खोलते महाविनाश होना चाहिए, तो कितनी प्रचंड शक्ति हो तब ये कार्य कर सके। जब भी लोग अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, अगर पूछा जाए कि अमरनाथ का महत्व क्या है, तो यही कहेंगे कि अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती जी को अमरनाथ की अमर कथा सुनाई थी, जिसके साक्षी वो दो कबूतर दिखाते हैं। अब शंकर ने पार्वती जी को कौन से अमरनाथ की अमर कथा सुनाई? इसका मतलब अमरनाथ और शंकर एक है या अलग है? अलग है, तभी तो उसने भी कथा सुनाई। ये तो हुई भारत वालों की बात, लेकिन वो कहानी याद आती है कि एक बार एक भिखारी था, रोज राजा के द्वार पर जाकर भीख मांगता था। राजा का भी नियम था कि मेरे द्वार पर जो आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा, कुछ न कुछ देना जरूर है। रोज कुछ न कुछ देता था। एक दिन भिखारी के मन में विचार आया, राजा लाता कहाँ से है? अगर उस सोर्स को मैं भी जान लूं, तो मुझे भी भीख मांगनी न पड़े। तो उसने सोचा जरूर राजा सुबह सुबह ही सोर्स से प्राप्त करता होगा, फिर सारा दिन लोगों को बांटता है। तो एक दिन भिखारी 6 बजे में पहुंच गया, द्वारपाल से जाकर पूछा कि द्वारपाल तुम मुझे ये बता कि इस वक्त राजा कहाँ होंगे और क्या करते होंगे। द्वारपाल ने कहा राजा तो मंदिर में बैठे पूजा कर रहे हैं। भिखारी ने सोचा जरूर वहाँ कोई स्रोत होगा। पूछा द्वारपाल से मैं वहाँ जा सकता हूँ? कहा क्यों नहीं जा सकते हैं, लेकिन पीछे बैठना। कहा मैं पीछे ही बैठूंगा, मुझे आगे कोई काम नहीं। पीछे जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु मेरी झोली सदा भर तू रखना, ताकि मैं अनेकों की झोली भर सकूं। जैसे ही भिखारी ने ये बात सुनी उठ करके बाहर आ गया। द्वारपाल ने पूछा बड़ा जल्दी बाहर आ गया, क्या बात है? कहा राज पता चला ये राजा भी भिखारी है, वो भगवान से मांगते हैं, हम उनसे मांगते हैं, तो हम भी भगवान से न मांगे। चलते चलते भिखारी के मन में विचार चलने लगे कि राजा पूजा कर रहे थे हनुमान जी की, इसका मतलब हनुमान जी ने राजा की झोली भरी, राजा ने हमारी झोली भरी। फिर विचार आया हनुमान जी की झोली किसने भरी? तो कहा वो तो श्री राम भक्त थे। फिर विचार आया श्री राम की झोली किसने भरी? तो कहा वो तो भोलेनाथ को याद करते थे। तो भिखारी सोच में पड़ गया कि इसका मतलब भोलेनाथ के बहुत सारे भक्त, उसमें से एक हिस्सा श्री राम को मिला होगा, श्री राम के भी इतने सारे भक्त, उसमें से एक हिस्सा हनुमान जी को मिला होगा, हनुमान जी के भी इतने सारे भक्त, उसमें से एक हिस्सा राजा को मिला होगा, और राजा के भी इतने सारे लोगों को देना होता है, तो एक हिस्सा मेरे पास आता है। तो भिखारी सोच में पड़ गया कि ये वाया वाया में सब कम हो रहा है, क्यों ना मैं डायरेक्ट कनेक्शन करूं भोलेनाथ के साथ ही, कहीं हम भी वाया वाया में तो नहीं अटक गए। क्या करना चाहिए? अरे डायरेक्ट कनेक्शन करूं, कोई प्रॉब्लम है क्या? जब सारे देवी देवताएं भी उनको ही याद करते हैं, तो हम भी डायरेक्ट कनेक्शन करें ना। ये तो ही भारत वालों की बात, भारत से बाहर जाते इस्लाम धर्म। कहा जाता कि इस्लाम धर्म में मक्का में काबा के पवित्र पत्थर की पूजा आराधना होती है, बंदगी होती है। और ये काबा का पवित्र पत्थर के पीछे कहानी है। कहानी ये है कि पहले मक्का के अंदर भी 360 देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी, हर एक के अपने अपने इष्ट होते थे, परंतु जब मोहम्मद पैगंबर साहब आए तब उन्होंने कहा अल्लाह एक है। काफी लड़ाई झगड़ा हुआ कि आप क्या कहना चाहते हैं, ये हमारे अल्लाह नहीं है। मोहम्मद पैगंबर साहब ने एक ही बात कही कि अल्लाह एक है। आखिर मोहम्मद पैगंबर साहब को वहां से मदीना भेज दिया गया, लेकिन फिर भी ये विचारधारा चलती रही। धीरे धीरे लोग उस विचारधारा से जुड़ते गए कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। जब काफी मात्रा में लोग इकट्ठे हो गए तो पुनः मक्का आए। काफी लड़ाई झगड़ा हुआ, खून खराबा हुआ। उस समय कहा जाता है एक आकाशवाणी हुई कि आप लड़ाई झगड़ा मत करो, मुझे इसी स्वरूप में याद करो। और ऊपर से ये पत्थर गिरा था। और तब से लेकर के वो 360 देवी देवताओं की मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया और ये पवित्र पत्थर की स्थापना की गई। और इसीलिए ये मान्यता है कि जीवन में एक बार ये पवित्र पत्थर का दर्शन अवश्य करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल हुआ। इसलिए हर साल उनकी हज यात्राएं निकलती है। हज में भी हर कोई नहीं जा सकता है, उसके नियम बहुत कड़े हैं। लेकिन वहां जाने के बाद वो क्या करते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, ये पवित्र पत्थर को चूमते हैं, शैतान को पत्थर मारते हैं और अंत में अपनी बंदगी के अंदर एक लाइन जरूर कहते हैं जिस लाइन के बिना उनका हज पूरा नहीं होता है। और वो लाइन है, हे परवरदिगार नूरे इलाही मेरा हज कबूल हो, तब उनका हज कबूल होता है। और 7 बार परिक्रमा करते हैं। 7 बार परिक्रमा सिर्फ हिंदू धर्म में होती है और सिर्फ मक्का में होती है, बाकी दुनिया में और किसी मस्जिद में भी नहीं होती। भावार्थ ये कि जिसको उन्होंने कहा अल्लाह नूर है, नूर का मतलब तेज प्रकाश, ज्योति का मतलब जिसको भारतवासियों ने ज्योतिर्लिंगम कहा, ज्योति माना भी प्रकाश तेज, नूर माना भी प्रकाश तेज, तो बात एक ही है या अलग है। और आगे जाए क्रिश्चियन धर्म में कहा जाता कि मोसेस जब माउंटेन पर गए जहां उनको 2 पत्थरों पर 10 कमांडमेंट्स मिले, उस समय उन्हें अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ जिसको देख करके मोसेस ने कहा ये होगा, यानी द सुप्रीम लाइट। जीसस ने कभी अपने आप को गॉड नहीं कहा, उसने हमेशा यही कहा गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। और इसीलिए जब उसको क्रॉस पर चढ़ा रहे थे उस वक्त भी अपनी अंतिम प्रार्थना में उसने यही कहा भगवान से कि हे प्रभु आप इन्हें क्षमा कर देना क्योंकि उन्हें पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। आज भी अगर वेटिकन चले जाओ जहां पोप की गद्दी है, उस चर्च के अंदर किसी व्यक्ति की प्रतिमा नहीं मिलेगी, जीसस की भी प्रतिमा नहीं, लेकिन अखंड ज्योति स्वरूप निराकार परमात्मा का ही लाइट का सिंबल मिलेगा जिसको क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, इस्लाम ने नूर कहा, हिंदुओं ने ज्योति कहा। बात एक ही है या अलग है? एक ही है। और आगे जाए गुरु नानक देव ने तो बड़े स्पष्ट शब्द में उसकी महिमा गाई है, जितना स्पष्ट और किसी ने नहीं कहा, एक ओमकार निराकार निर्वैर सतनाम काल मूरत अजूनी, कितनी सुंदर रीति से सारी महिमा गाई है। इसीलिए दिखाया जाता कि गुरु गोविंद सिंह जी ने भी शिव की महिमा गाई थी। और आगे जाए जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर दिखाते हैं, लेकिन ये 24 के 24 तीर्थंकर ध्यान मुद्रा में दिखाए गए। किसका ध्यान कर रहे? उनसे श्रेष्ठ कौन था? आज भी जब जैनी लोग दिवाली के दिन महावीर स्वामी का निर्वाण दिन मनाते हैं, उस वक्त अपनी प्रार्थना में यही गाते हैं कि आपने जो शिव धाम को प्राप्त किया वो गति हमें भी प्राप्त हो, वो शिव धाम कौन सा है। और उस परमेश्वर के लिए उन्होंने नाम दिया सिद्ध शिलापति। सिद्ध शिलापति माना जो सर्वश्रेष्ठ है। और उस श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने के लिए तीन बातें बताते हैं, ज्ञान दर्शन चरित्र, के परमात्मा की अनुभूति करने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान के दिव्य चक्षु चाहिए, और चरित्र श्रेष्ठ होना चाहिए, तभी उस श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 24 तीर्थंकरों ने भी जो ध्यान किया वो सिद्ध शिलापति यानी जो निराकार है उस पर ही अपना ध्यान किया। और आगे जाए, महात्मा बुद्ध ने कभी किसी को मूर्ति पूजा की ओर प्रेरित नहीं किया, लेकिन उन्होंने भी ध्यान किया। किसका ध्यान किया? आज भी जापान चले जाओ, 3 फुट की ऊंचाई पर और 3 फुट दूर बैठ के एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखा जाता है, जिसको कहते हैं करनी का पवित्र पत्थर, और जिसका नाम है चिंकुनसेकी। चिंकुनसेकी माना जो शांति का दाता है, जिसका ध्यान करने से शांति मिलती है। उसके सामने बैठकर मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन माना ही अपने आप को भीतर से सशक्त करना। और आगे जाए, पारसी धर्म में अगर देखें तो कहा जाता पारसी लोग जब ईरान से भारत आए थे तो जलती हुई ज्योत को लेकर आए थे। आज भी उनके मंदिर को कहा ही जाता है द फायर टेम्पल, जहां अखंड ज्योत निरंतर जलती रहती है। यानी जो सर्व धर्म मान्य है वो कौन है? एक ही है, जिसको किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, प्रभु कहा, मालिक कहा, जो भी कहा, लेकिन वही देवों का देव जिसकी पूजा सभी देवी देवताओं ने भी की। तो नाम अलग अलग है लेकिन स्वरूप तो एक ही है। चाहे किसी ने नूर कहा, प्रकाश कहा, ज्योति कहा, लाइट कहा, अखंड ज्योति कहा, निराकार कहा, है तो वो एक ही। जैसे आपको कोई चाचा कहे, मामा कहे, भाई कहे, पिताजी कहे, लेकिन आपका स्वरूप तो एक ही होगा या हर बार बदली हो जाएगा? ऐसे ईश्वर को भी कोई मालिक कहे, पिताजी कहे या बाबा कहे, जो भी कहे, है तो वो एक ही। इसीलिए सर्व धर्म मान्य एक ही है। वही सर्वोच्च शक्ति है जिसके तरफ सभी ने अपनी अंगुली का इशारा किया। इसीलिए शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है, शिव शंभु। शंभु का ओरिजिनल शब्द है स्वयंभू। स्वयंभू माना जो स्वयं प्रकट हुआ है, जिसको उत्पन्न करने वाला कोई नहीं। वही सर्वोपरि, सभी चक्र से ऊपर, न जन्म है न मृत्यु है, न देह है न देह के संबंध है, न कर्म है न कर्म का फल है, न पाप है न पुण्य है, न सुख है न दुख है, जो इन सभी चक्र से ऊपर। इसीलिए गीता में 4th अध्याय में भगवान ने कहा, मैं अजन्मा अव्यक्त हूँ, मुझे कोई व्यक्त आकृति नहीं है, अव्यक्त पुरुष, अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, मेरा जन्म मनुष्य सदृश नहीं, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है, मैं किसी माता के गर्भ से नहीं आता हूँ, मेरा जन्म इन चरम चक्षु से देखा नहीं जा सकता है। और इसीलिए 9th अध्याय में भी भगवान ने यही कहा, मैं इस जगत का आधार मूरत हूँ, जगत नियंता हूँ, नित्य दिव्य प्रकाश स्वरूप हूँ, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म अशरीरी हूँ। ये परमात्मा के स्वरूप के बारे में जो परमात्मा ने कहा है गीता के अंदर, इसीलिए तो अर्जुन को भी जब संशय पड़ता है और तब वो भगवान से कहता है कि हे प्रभु, क्या वो अंतर चक्षु मुझे भी प्राप्त हो सकता है जिससे मैं आपका यथार्थ स्वरूप देख सकूं, जान सकूं? तब कहा जाता भगवान ने उसको दिव्य चक्षु का वरदान दिया, और ये वरदान सिर्फ चार लोगों को था। एक अर्जुन को प्राप्त हुआ, दूसरा संजय को प्राप्त था, तीसरा भीष्म पितामह को प्राप्त था, और चौथा वेद व्यास जी को प्राप्त था। तब संजय ने जो वर्णन किया है 10वें अध्याय में, जब अर्जुन को वह दिव्य चक्षु प्राप्त होता है और जो पहला साक्षात्कार उसको होता है, वो हजारों सूर्य से तेजोमय स्वरूप का, जिसका तेज स्वयं अर्जुन भी नहीं देख पाया और कहा बस करो प्रभु, ये तेज मैं सह नहीं पा रहा, और उसके बाद विराट रूप दिखाया कि जिस कृष्ण को देख रहा था, जिसके अनेक पुनर्जन्म है, जो हर चेहरा विराट रूप में दिखाया गया था, वो हर चेहरा हर जन्म का स्वरूप था। तो जो अनेक पुनर्जन्म में आने वाला स्वरूप, वो विराट रूप से कृष्ण का, और जो अजन्मा स्वरूप परमात्मा का, हजारों सूर्य से तेजोमय स्वरूप, अशरीरी नित्य दिव्य प्रकाश स्वरूप, जो अकर्ता भोक्ता, जो सभी चक्र से परे, और वही परमात्मा पर होते हुए भी सर्वज्ञ है। इसीलिए शिवलिंग के ऊपर तीन लकीर लगाई जाती है, भावार्थ जो आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, और तीनों कालों का ज्ञान होने कारण उसको त्रिकालदर्शी कहते हैं। वो तीन लकीर के बीच में एक आंख होती है, अर्थात मनुष्य आत्मा को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाले, जिससे मनुष्य भी कल्याण का दर्शन कर सके, इसलिए शिवम कहा। और उस परमात्मा की हर रचना अति सुंदर है, इसीलिए उसकी पूजा में तीन पत्र का बैल पत्र चढ़ाते हैं, जो एक डंडी से जुड़ा होना चाहिए, अलग अलग पत्ते नहीं होने चाहिए, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश, जी ओडी गॉड, कभी भगवान को कहते गॉड फादर, यानी द फादर ऑफ जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, त्रिमूर्ति, ये तीनों मूर्तियों का गायन इसीलिए हर धर्म में मिलेगा। जिसको हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश कहा, इस्लाम धर्म में जिसको जिब्राइल मिकाइल इसराफिल कहते हैं, क्रिश्चियन धर्म में जिसको द थ्री होली एंजल्स कहते हैं, हर धर्म में ये तीन देवताओं का गायन भी अवश्य मिलेगा, और उसकी हर रचना सुंदर होने कारण उसको सुंदरम का। तो सत्यम शिवम सुंदरम परमेश्वर के लिए कहा। लेकिन यहाँ भारतवासी को एक प्रश्न जरूर उत्पन्न होता है कि जो ब्रह्मा का चित्र यहाँ दिखाया गया और जो ब्रह्मा का चित्र मंदिरों में देखते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। अंतर क्या है? तो ब्रह्मा एक ही देवता ऐसा है जिसको दाढ़ी मुछ और वृद्ध अवस्था है, बाकी देवताओं को दाढ़ी मुछ नहीं होती है, न वृद्ध अवस्था होती है, यानी ये किसी बात का प्रतीक है। ब्रह्मा को चार मुखधारी दिखाया है। आज की दुनिया में कोई दो मुंह वाला बच्चा पैदा होता है तो भी एबनॉर्मल चाइल्ड कहते हैं। ब्रह्मा को चार मुख होने के बावजूद भी उसको एबनॉर्मल नहीं कहा, यानी ये भी किसी बात का प्रतीक है। कमल आसन पर दिखाया, कमल के ऊपर कोई बैठ नहीं सकता है, लेकिन ये भी किसी बात का प्रतीक है। ब्रह्मा के हाथ में सारे शास्त्र दिखाए, अब ब्रह्मा को शास्त्र पढ़ने की जरूरत क्या थी, ये भी किसी बात का प्रतीक है। किस बात का प्रतीक है? तो कहा जाता कि जब परमात्मा को नई सृष्टि रचने का विचार आता है, उस समय ये संसार में कौन सा समय चल रहा था, तो देवों की सृष्टि नहीं थी, असुरों की सृष्टि भी नहीं थी, मनुष्य सृष्टि थी। और मनुष्य तन का प्रतीक दाढ़ी मूछ और वृद्ध अवस्था है। मनुष्य को ही दाढ़ी मूछ होती है, देवताओं को नहीं होती है। असुरों को बड़ी बड़ी मूछें होंगी, बाकी मनुष्य को दाढ़ी मूछ और वृद्ध अवस्था। तो वो समय संसार में मनुष्य सृष्टि चल रही, मनुष्य सृष्टि का प्रतीक है। उसके बाद भगवान ने आकर क्या किया? तो सबसे पहले उसके जीवन को प्यूरिफाई किया, इसलिए उसको कमल आसन पर दिखाया। यानी उस समय संसार कीचड़ जैसा था और उस कीचड़ के अंदर एक कमल को खिलाया, उसके जीवन का प्यूरिफिकेशन। और वो प्यूरिफिकेशन कैसे किया? तो सभी शास्त्र का निचोड़ सुना करके। इसीलिए ब्रह्मा के हाथ में सारे वेद पुराण उपनिषद सारे शास्त्र दिखाए कि सभी शास्त्र का एसेंस किसको सुनाया, किसको सुनाया? कोई हिंदू धर्म वालों को नहीं, सारे संसार की आत्माओं को। सारा संसार कैसे दिखाए? तो चार दिशा में चार मुख है, यानी वो ज्ञान जो उनके मुख कमल द्वारा फैला, संसार के चारों कोनों में फैला। और फैला कैसे? तो सहस्त्र भुजाओं द्वारा। आज कोई हमारा मददगार होता है तो यही कहते हैं ये मेरा राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है। परमात्मा के इस दिव्य कार्य में हजारों आत्माएं उसके राइट हैंड लेफ्ट हैंड बनकर के कार्य में जुड़ गए। इसीलिए गीता के सातवें अध्याय में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मैं जब इस संसार में आता हूँ अति साधारण रूप में आता हूँ, जिस कारण मूढ़मति मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते, कोटों में कोई और कोई में भी कोई विरला मेरे यथार्थ स्वरूप को जानकर पहचान कर मुझे प्राप्त कर लेते हैं। सभी नहीं पहचान सकते वो साधारण स्वरूप, नर स्वरूप। आज अगर श्री कृष्ण के रूप में आए भगवान या कोई दिव्य स्वरूप में आए तो कौन उसको नहीं पहचानेगा और उसको कार्य करने देगा संसार परिवर्तन का, या दर्शन की भीड़ मचा देंगे, क्या करेंगे? है ना, वो याद आता है मुझे किस्सा कि एक साल ऐसा था जब गणेश जी ने दूध पिया था, है ना, और उस समय हर मंदिर गणेश जी के मंदिर के बाहर लाइन लगी थी, रात रात लोग लाइन में खड़े रहे थे दर्शन के लिए। आज अगर भगवान भी कोई दिव्य रूप लेकर के आए तो उसको काम करने देंगे या दर्शन की भीड़ मचा देंगे? इसीलिए भगवान ने कहा मैं अति साधारण रूप में आता हूँ, जिस कारण मूढ़मति मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते, कोटों में कोई कोई में भी कोई विरला मेरे यथार्थ स्वरूप को जानकर पहचान कर मुझे प्राप्त कर लेते हैं। अब आपको ये देखना है कि आप वो विरला है या नहीं है, आप वो कोटों में कोई है या नहीं है, वो आपको डिसाइड करना है, आपको चॉइस करना है। और वही परमात्मा सर्व गुणों में अनंत है, इसीलिए ज्योमेट्री के अंदर बिंदु का डेफिनेशन है इन्फिनिट, अनंत, डायमेंशनलेस, मेजरमेंटलेस, उसको कहा इन्फिनिट। विज्ञान के अंदर सबसे सूक्ष्म अणु होता है और परमात्मा ने कहा मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म, इसीलिए सर्वशक्तिमान है। तो ये था परमात्मा का संपूर्ण परिचय। जैसे किसी व्यक्ति का परिचय लेते हैं तो पांच बातें पूछते, आपका नाम क्या है, फिर आइडेंटिटी, फोटो चाहिए वही है या दूसरा है, फिर क्वालिफिकेशन, चौथा एड्रेस, पांचवा प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। इन पांच बातों के अंदर संपूर्ण परिचय आ जाता है। आज परमात्मा के परिचय में भी हमने ये पांचों बातों को देखा, जिसका दिव्य नाम सदाशिव, यहोवा, गॉड, अल्लाह, वाहे गुरु, सिद्ध शिलापति, चिंकुन से की, जो भी कहो, मालिक, जिसका स्वरूप है अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप, निराकार, नूर, प्रकाश, लाइट, अखंड ज्योति, जो भी कहो। उसके क्वालिफिकेशन वो पांच बातें, सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च शक्ति, सर्वोपरे, सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत, सर्वशक्तिमान। और उसका एड्रेस, पार ब्रह्म में रहने वाला परमेश्वर, जो मोक्ष धाम, सच खंड, रूहानी दुनिया, हाईएस्ट हेवनली अबोर्ड, अलग अलग धर्म में अलग अलग नाम दिए हैं, उस धाम के निवासी है। और उसका कर्तव्य क्या है, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है तब तब अधर्म का नाश और एक सत सनातन धर्म की पुनः स्थापना करना। लेकिन परमात्मा खुद नहीं करते, इसीलिए उसको करण करावनहार कराता है, ब्रह्मा द्वारा सर्जना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा महाविनाश का कार्य। तो ये था परमात्मा का संपूर्ण परिचय। ठीक है, अभी तो अगर आपके बच्चे या आपके पोते आपसे पूछे कि ये सभी भगवानों का हेड कौन है, तो जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? दे पाएंगे हा? तो इसीलिए अभी कंफ्यूजन समाप्त, कौन होगा, ये होगा, वो होगा, ये कंफ्यूजन नहीं, एक ही स्वरूप। और अभी कॉन्सेंट्रेशन के लिए, एकाग्रता के लिए भी सहज हो गया। आज दिन तक मन भटकता था क्योंकि पता ही नहीं था कहाँ लगाना है, किस में लगाना है, इसलिए मन भटकता रहा। लेकिन अब तो स्पष्ट हो गया, तो अब तो लगेगा या नहीं लगेगा हा? तो अभी थोड़ी देर हम परमात्मा के ध्यान में बैठेंगे और ध्यान के लिए ईश्वर से मांगने की जरूरत नहीं है कि हे प्रभु शांति दो, सुख दो, ये मांगने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सूर्य के सामने खड़े हो जाओ तो सूर्य से मांगते नहीं है कि सूर्य तेरी गर्माइश मुझे दे। समुद्र के सामने खड़े होकर समुद्र से मांगते नहीं है कि तेरी शीतल हवा मुझे दे। आप खड़े रहो, मिलेगी। रोम रोम के अंदर वो गर्माइश भी भर जाएगी, रोम रोम के अंदर वो शीतलता भी समा जाएगी। इसी तरह परमात्मा से भी मांगने की जरूरत नहीं, अपने ध्यान को एकाग्र करो और उस परमात्मा से जो शक्तियों की ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसको समाते जाओ। ठीक है, और बैटरी चार्ज करते जाओ। तो थोड़ी देर के लिए कोई बीच में से उठेगा नहीं, क्योंकि एकाग्रता का अनुभव करने के लिए जितनी शारीरिक एकाग्रता होगी उतनी मन की एकाग्रता को भी सहज ले आ सकेंगे। तो कुछ देर के लिए अपने ध्यान को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं। पीठ सीधी हो, स्वस्थ होकर के बैठें और अपने ध्यान को ईश्वर के दिव्य स्वरूप पर एकाग्र करना है और उस परमात्मा पर एकाग्र करते हुए सर्वप्रथम स्वयं को आत्मभाव में स्थित करो। अंतर चक्षु से स्वयं को देखो, ब्रुकुटी की मध्य में मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा, ये शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने धारण किया है संसार रंगमंच पर अपना पात्र निभाने। मैं आत्मा इस देह रूपी वस्त्र से अलग न्यारी हूं। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को ले चलते हैं एक यात्रा पर अनंत की ओर, परमात्मा सानिध्य में। पंच तत्व की दुनिया से दूर, सूर्य चंद्र तारा गण से भी पार, दिव्य लोक में जहां चारों ओर दिव्य प्रकाश छाया हुआ है, मैं आत्मा उस दिव्य लोक में संपूर्ण मुक्त अवस्था में, कोई बंधन नहीं, कोई बोझ नहीं, स्वतंत्र प्रकाश पुंज। कितना दिव्य स्वरूप है मेरा, मैं आत्मा चैतन्य शक्ति। धीरे धीरे स्वयं को अपने पिता परमात्मा के सानिध्य में देखती हूँ, जैसे मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूँ, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय अखंड ज्योति स्वरूप है। कितना दिव्य रूप है। जैसे जैसे मैं अपने ध्यान को उस परमात्मा पर एकाग्र करती हूँ, सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की, सर्व शक्तियों की ऊर्जा स्वयं में समाती जा रही है। और धीरे धीरे अपने मन की बैटरी को चार्ज करती जा रही है। मैं आत्मा सशक्त बनती जा रही है। शांति के सागर पिता परमात्मा की संतान मैं आत्मा शांत स्वरूप शांति मेरा स्वधर्म है। मेरे मन की गति शांत होती जा रही है। मैं अपने चारों ओर शांति के प्रकंपनों को महसूस कर रही हूँ। इसी शांति में सच्चा सुख समाया हुआ है। इसी शांति में प्रसन्नता है, परम आनंद है। कितना सुंदर अनुभव है ये। इसी शांति में शक्ति है। मैं शांत हूँ, शुद्ध हूँ, शक्ति स्वरूप। यही मेरी वास्तविकता है। कुछ क्षण के लिए इस परमात्म मिलन को अनुभव करती जाऊं, समा जाऊं उस परम आनंद सच्चे सुख में। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को वापस इस पंच तत्व की दुनिया की ओर शरीर में ब्रुकुटि की मध्य में स्थित कर ओम शांति शांति।